ये आकाशवाणी है, अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान और इसराइल पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। संघर्ष विराम अगले कुछ घंटों में प्रभावी होगा। यह घोषणा कल रात कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद की गई। एक रिपोर्ट।
एक बयान में श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों द्वारा अपने अंतिम मिशन समाप्त करने के बाद ये संघर्ष विराम लागू होगा। ये संघर्ष विराम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध विराम की पहल करेगा और 12 घंटे बाद इजराइल युद्ध विराम लागू करेगा। 24 घंटे बाद 12 दिन के युद्ध की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा की जाएगी। ईरान और इजराइल भी संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
उधर कतर ने कहा है कि उसे भी ईरान के हमले का सीधा जवाब देने का अधिकार है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के हमले की निंदा करते हुए इसे कतर की संप्रभुता, हवाई क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया। इससे पहले इसराइल ने ईरान के करमनशाह प्रांत में सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर और हथियार भंडार पर हमले किए। ईरान ने भी इसराइल में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। वहीं ईरान की संसद ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस पारगमन मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। इस बीच ईरान के हमलों के बाद तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले 5 वर्षों में एक ही दिन में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल कम हुई और इसमें 6% से अधिक की गिरावट आई। सप्ताहांत के तनावों के कारण तेल बाजार में शुरुआत में उछाल आया, लेकिन तेल की बिकवाली तेजी से शुरू हुई। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत मशहद से सुरक्षित निकाले गए 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक कल शाम विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन्हें मिलाकर अब तक ईरान से 2003 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। इस बीच 161 यात्रियों का पहला जत्था आज अम्मान से दिल्ली पहुंचेगा। इन सभी लोगों को इसराइल से निकालकर सड़क मार्ग से अम्मान ले जाया गया था। भारत सरकार उन भारतीय नागरिकों को इसराइल से निकाल रही है जो वहां से निकलना चाहते हैं। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने अनुरोध किया गया है कि वे दूतावास में अपना पंजीकरण कराएं। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में देश के बारे में की गई टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्हें अवांछित तथा तथ्यात्मक दृष्टि से गलत बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा संचालित ये बयान संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए OIC मंच के निरंतर दुरुपयोग को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की 47वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में संग्रहालयों का बहुत महत्व है और उनमें लोगों को इतिहास का अनुभव कराने की शक्ति है। आपातकाल के आगामी 50वें वर्ष के मद्देनजर उस अवधि से संबंधित सभी कानूनी दस्तावेजों और अभिलेखों को भी संकलित करने का सुझाव दिया ताकि इतिहास के उस अध्याय को संरक्षित रखा जा सके। उन्होंने संग्रहालयों में लोगों की रुचि उत्पन्न करने और इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में देश के दो महान आध्यात्मिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। ये बातचीत 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुई थी। ये वैकोम सत्याग्रह, धार्मिक रूपांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान आदि के इर्द गिर्द केंद्रित थे। मौसम विभाग ने 25 जून से उत्तर पश्चिम भारत में तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अगले 6 दिनों के दौरान मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज बहुत तेज वर्षा होने की आशंका है। लीड्स में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 371 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने कल चौथे दिन तक बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऋषभ पंत और केएल राहुल के शतकों के सहारे भारत ने दूसरी पारी में 364 रन बनाए। पंत ने एक ही टेस्ट में 2 शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।